अयि मित्रगणाः नमस्करोमि पुनरपि एकवारम् आरम्भं करिष्यामि रेडियो मधुबनस्य कार्यक्रमं पठामि संस्कृतम् इति शृण्वन्तु पठन्तु च पातञ्जलयोगसूत्रस्य कतिपयानि सूत्राणि तो मित्रगण रेडियो मधुबन पर पठामि संस्कृतम् कार्यक्रम के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे पातञ्जलयोगसूत्र तो मित्रों पिछली बार हमने 32 सूत्र तक की पढ़ाई की है आज हम 33वें सूत्र से आरंभ करते हैं त्रित्रिंशततमं सूत्रं वर्तते मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम् तो इसके पहले पतंजलि मुनि ने बताया था कि चित्त की एकाग्रता के लिए जो बाधक भावनाएं होती हैं दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व इत्यादि तो उनका प्रतिषेध करने के लिए एक तत्वाभ्यास अर्थात किसी एक बात पर मन को पूरी तरह से केंद्रित करना ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित करना यह उपाय बताया था तो ये एक सीढ़ी हुई अब अगली सीढ़ियों पर कैसे चलना है इसे मुनि बताते हैं तो दूसरी बात जो कहते हैं वो इस 33वें सूत्र में है कि जब हम अपने मन में मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इस प्रकार की भावनाएं रखते हैं तब उनके कारण हमारे चित्त को प्रसन्नता मिलती है और इन भावनाओं से हमें अपने चित्त को सदा प्रसन्न रखना चाहिए चित्त प्रसादनम अर्थात हमें चित्त को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए और ये जो भावनाएं बताई हैं इनका थोड़ा सा विवेचन भी हम कर लें तो मैत्री का अर्थ है जो सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके विषय में हम मैत्री रखें उनकी अच्छी बातों का हम स्मरण करें करुणा जो हमारी अपेक्षा दुख में पड़े हुए लोग हैं उनके प्रति हम करुणा रखें उनके दुख के निवारण की भावना को मन में रखें उनके दुख का निवारण करने का प्रयास करें तब उसे कहा जाएगा करुणा मुदिता अर्थात जो लोग हमारी अपेक्षा अधिक सुखी हैं उनके पुण्य के कारण उन्हें वह सुख मिल रहा है तो उनकी पुण्यप्रद बातों का हम स्मरण करके आनंदित हों तो उसे कहेंगे मुदिता और जो पाप करने वाले लोग हैं उनके पाप के प्रति हम उपेक्षा भावना रखें उसका समर्थन ना करें उसका अनुकरण भी ना करें तो वह भावना हुई उपेक्षा तो मुनि कहते हैं कि मैत्री करुणा मुदिता और पापाचार के प्रति उपेक्षा इन भावनाओं को मन में अधिक स्थान जब हम देते हैं तब हमारे चित्त को प्रसन्नता प्राप्त होती है साथ साथ सुख दुख पुण्य अपुण्य इत्यादि विषयों के बाबत भी हम सोचें और उसमें से जो पुण्यवान बातें हैं उनका हम ग्रहण करें तो इन बातों से मन में प्रसन्नता का उदय होता है और फिर जब चित्त प्रसन्न हो तो उसे ध्यान या धारणा में सुविधा होती है सरलता होती है अगला 34वां सूत्र कहते हैं प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य तो दूसरा अगला उपाय बताते हैं अगली सीढ़ी बताते हैं और यहाँ शब्द है वा अर्थात जो पहला उपाय बताया उसकी अपेक्षा उसके बदले यह दूसरा उपाय भी किया जा सकता है और वह उपाय क्या है कि प्राण अर्थात जो हम सांस खींचते हैं या लेते हैं और छोड़ते हैं उसके विषय में बताते हैं कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य प्राणों का हम क्या करें तो प्रच्छर्दन और विधारणा प्रच्छर्दन का अर्थ हुआ कि जो सांस हम लेते हैं उसे बहुत धीमी धीमी गति से उसे बाहर निकलने दें अन्यथा जब हम नैसर्गिक रीति से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वह क्रिया जल्दी जल्दी पूरी होती है लेकिन यहाँ जो प्रच्छर्दन की क्रिया बताई है उसमें सांस को बहुत धीरे धीरे निकलने देना पड़ता है और विधारणा एक बार जब सांस छोड़ दी, पूरी तरह से सांस छूट गई, उसके बाद तुरंत सांस लेने की बजाय उसी स्थिति में थोड़ी देर रुक करके फिर अगर हम सांस लेते हैं, तो इस प्रकार की विधारणा या बाह्य कुंभक करने से भी चित्त प्रसन्न होता है। अगला 35वां सूत्र कहते हैं, विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। यहाँ मनसः स्थिति निबंधनी का अर्थ हुआ मन की स्थिति को बांधने वाली। तो मन की स्थिति को बांधने वाली क्या क्रिया है उसे बताते हैं। तो विषयवती प्रवृत्ति, यहाँ इंद्रियों के विषय की चर्चा हो रही है। जैसे हमारा घ्राणेन्द्रिय है, नाक है, उसका विषय है गंध, जिह्वा का विषय है रस, नेत्रों का विषय है रूप, कानों का विषय है शब्द और त्वचा का विषय है स्पर्श। तो ये हमारी पांचों ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं, शब्द रस रूप गंध स्पर्श। इनमें से किसी एक विषय की प्रवृत्ति उत्पन्न होने से भी मन बंध जाता है। लेकिन ये एक योग क्रिया है, तो इसमें उस इंद्रिय के विषय को प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं रखना है। बिना किसी गंध को सामने लाए ही जब नासिका को स्वयं एक गंध की अनुभूति होती है, या बिना किसी पदार्थ को खाए ही जिह्वा में रस की अनुभूति होती है, या त्वचा में संवेदना अपने आप उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति को विषयवती प्रवृत्ति कहते हैं। और इस प्रकार की प्रवृत्ति जब उत्पन्न होती है तब भी उससे मन को बांधा जा सकता है, मन एकाग्र हो जाता है। तो ये थोड़ी गूढ़ क्रिया मुनि ने यहाँ बताई है। अगला सूत्र बहुत सुंदर है, कहते हैं विशोका वा ज्योतिषमती। बहुत सुंदर शब्द है विशोका। ऐसी मान्यता है कि हमारा हृदय एक कमल के आकार में है और उसके अंदर एक ज्योत जलती रहती है जो कि तमोगुण और रजोगुण से रहित है और केवल सत्व गुण से वह प्रकाशित होती है। तो उस ज्योत को ज्योतिषमती की संज्ञा दी गई है और उसे विशोका भी कहा गया है क्योंकि वह शोकों का नाश करने वाली है। तो उस ज्योति पर भी हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगले 37वें सूत्र में मुनि कहते हैं, वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग अर्थात जिसके राग समाप्त हो गए हैं, और राग का अर्थ हुआ कि जो इंद्रियों के विषय हैं उनके प्रति आसक्ति। तो ये आसक्ति जब समाप्त हो जाती है तब भी चित्त की एकाग्रता साधी जा सकती है। कहीं कहीं हमें पाठ भेद भी मिलता है इस सूत्र में, और वहाँ कहा गया है विराग विषयम वा चित्तम। तो अर्थ एक ही हुआ कि चित्त अगर विरागी बन जाता है, चित्त में अगर वैराग्य समा जाता है, विषयों के प्रति विराग उत्पन्न हो जाए, अर्थात हमारी चित्त में सारी इंद्रियों के जो विषय सुख हैं उनके प्रति अभिलाषा पूरी तरह से हट जाए, तो भी चित्त की एकाग्रता तत्काल ही संपन्न होती है। इसी प्रकार अगले श्लोक में कहते हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। अब ये बात ऐसी है जिसका अधिकतर कोई प्रचार नहीं करता, लेकिन मुनि कहते हैं कि स्वप्न ज्ञान या निद्रा ज्ञान का आधार लेकर के भी चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। अब स्वप्न ज्ञान क्या हुआ कि अगर हमें किसी स्वप्न का स्मरण है तो उसका चिंतन करने से और निद्रा ज्ञान क्या हुआ? तो जब हम बहुत ही सुखपूर्वक नींद ले पाते हैं तो उस निद्रा के प्रति सजग हो करके उसका अगर हम ध्यान के लिए आलंबन करते हैं तब भी चित्त की एकाग्रता तत्काल संभव है। यथा अभिमत ध्यानाद्वा, अगला सूत्र की यथा अभिमत, जिस किसी वस्तु को देख करके आपका ध्यान लग जाता हो उस पर आप ध्यान केंद्रित करो और चित्त को एकाग्र करो, यथा अभिमत ध्यानाद्वा। तो मित्रों आज हम यहाँ रुकेंगे। तुम सुनते रहो पठामी संस्कृतम, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो, नमस्कार।